अगला क्लास के लिए हमारे मध्य मधुबन तपोभूमि शांतिवन से आदरणीय राजू भाई जी पधार रहे हैं। राजू भाई जी मधुबन की वो शान है जिन्होंने दादी के संग रहकर यज्ञ के कारोबार को सुचारू रूप से चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। राजू भाई से सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी आज आप सबको राजू भाई से परिचित करवाते हैं। राजू भाई जी ने 1976 से मधुबन में मुरली की सेवाएं शुरू की। उससे पूर्व पहले हाथ से लिखत होती थी मुरली, तो सिंधी भाषा भी आपने सीख ली और दादियों के लिए, वरिष्ठ दीदियों के लिए सिंधी भाषा में मुरली टाइपिंग का, उस जमाने में टाइपराइटर होता था और टाइपराइटर में आप पहले मुरली टाइप करते थे और पूरे विश्व में साइक्लोस्टाइल कॉपी उस समय लंबी लीगल साइज में प्रिंट होती थी वो तैयार आप करते थे। नई नई इन्वेंशन के साथ आज मुरली में काफ़ी अपडेटेशन के साथ आज आप तैयार कर रहे हैं। बाप दादा ने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान भी दिया है और अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों के उच्चारण के साथ ही तुरंत ही वो कंप्यूटराइज कॉपी आप तैयार करके सभी ब्राह्मणों को इतने सालों तक आप देते रहे। ज्ञान का अध्ययन और राजयोग की विशेष गहन अनुभूति के फलस्वरूप आपने कई आध्यात्मिक किताबों का प्रकाशन किया है। लेखन कार्य में आपकी विशेषता रही है और विशेष शाश्वत योगिक खेती और ग्राम को दत्तक लेने की जो योजना है ग्राम विकास प्रभाग में, उसमें आपका बहुत अहम पूर्ण भूमिका है। ग्राम विकास प्रभाग के आप उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं पूरे भारतवर्ष में दे रहे हैं। साथ साथ मुख्यालय से मधुबन से हर सेवा केंद्र पर जो पत्र पुष्प आदरणीय दादी जियों की याद पत्र के साथ, वर्तमान समय हमारे आदरणीय मोहिनी दीदी की स्मृतियों के साथ जो हमें मिलता है उसको तैयार आप निमित्त बन करके करते हैं। आपके द्वारा अनमोल रतन ये एक टॉक शो हमारे पीस ऑफ माइंड पर जो चलता है उसके भी आप मुख्य वक्ता है। तो ऐसे विशेष प्रतिभा के धनी परम आदरणीय श्रद्धेय राजू भाई जी से हम सुनेंगे। आज का क्लास का विषय है पाप और पुण्य की घोर्य गति, क्योंकि हम सभी ब्राह्मणों का अकाउंट किस प्रकार से हमें बैलेंस करना है और क्या गति हो सकती है। भाई जी अपने मनन चिंतन के आधार से हम सबको मार्गदर्शन देंगे। परम आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी, राजू भाई जी का हम फिर से एक बार करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते
ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को पुण्य की पूंजी जमा करने की बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं, लेकिन आज के इस क्लास का विषय रखा है कि पाप और पुण्य दोनों की गुह्य गति क्या है। कर्मों की गुह्य गति तो सुनते आए, कर्म ही श्रेष्ठ कर्म होते, कर्म अकर्म होते, कर्म विकर्म होते, लेकिन मीठे बाबा ने हम सब बच्चों को पापों की भी बहुत गहन गति सिखाई। पापों की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, पापों का बाप कौन, देह अभिमान। सतयुग और त्रेता में सभी पुण्य आत्माएं थी, क्योंकि वहां पर नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति थी, देह अभिमान का नाम नहीं था। लेकिन जब देह अभिमान शुरू हुआ, बॉडी कॉन्शियस में हम आए, द्वापर युग में जब स्वयं को भूल गए, शरीर समझ बैठे, तो शरीर की कर्म इंद्रियों से पाप कर्म शुरू हो गए। कैसे कैसे पाप हुए हम सब जानते हैं कि देह अभिमान आते ही सबसे पहले काम महाशत्रु ने अटैक किया। रचना जो योग बल की थी वो भोग बल की हो गई, विकारों से होने लगी पूरी सृष्टि पर। कभी शायद आप सभी विचार करते होंगे कि सतयुग त्रेता में जब देवताएं कोई गलत काम नहीं किया, सदा पुण्य कर्म करते रहे, अचानक द्वापर में पूरा ही गोल्डन एज, सोने हीरे रतन जड़ित महल द्वापर में धरती के नीचे कैसे चले गए? इतना बड़ा भूकंप क्यों आ गया? चलो कलयुग में तो पाप का घड़ा भरता है, पाप का घड़ा फूटता है, द्वापर में इतना कौन सा पाप हुआ था जो इतना बड़ा विनाश हुआ, जो धरती सीधे ध्रुव पर घूम रही थी, जो भी ऋतुएं हैं वो सब एक जैसी वसंत ऋतु थी। सतयुग त्रेता में अत्यधिक गर्मी नहीं, ठंडी नहीं, समय अनुसार सभी ऋतु साथ साथ काम करते, लेकिन द्वापर युग आते ही सृष्टि ने अपना एंगल बदल लिया। एंगल बदलते ही इतने बड़े भूकंप के अंदर सब कुछ जो भी था वो सब उथल पुथल हो गया, और द्वापर में फिर जब दुख शुरू हुआ विकारों के कारण, तो भक्ति मार्ग शुरू हुआ, पूजा पाठ शुरू हुई, लेकिन देह अभिमान के कारण इन विकारों ने बाबा कभी कभी साकार मुरली में एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं कि बच्चे इन काम क्रोध के भूत ने भारत को कंगाल बना दिया, जो हीरे जवाहरात का भरा हुआ मटका था उसको खाली कर दिया। तो देह मान के कारण इन विकारों के अधीन हुए, हर कर्मिंद्रिय से पाप होने लगे, और वर्तमान समय तो फुल देह मान ही नहीं लेकिन उसने और बड़ा रूप ले लिया, देह अहंकार आ गया। और अहंकार वाला व्यक्ति तो किसी को भी छोड़ता नहीं है, हर एक के प्रति उसकी नफरत की भावनाएं, द्वेष की भावनाएं, उससे बहुत सी अपेक्षाएं और अपना अधिकार रखता, इसलिए अहंकार के कारण उसमें क्रोध उत्पन्न होता, आपसी झगड़े शुरू होते। तो मीठे बाबा ने इसकी बहुत सुंदर गति बताई कि जब आत्मा इस बॉडी कॉन्शियस के अंदर फंस गई, देह अभिमान में आ गई, तो मन और इंद्रियों का आपस में बहुत मेल जोल हो गया। जैसा मन ने सोचा वैसा ही कर्म इंद्रियों ने कार्य करना शुरू कर दिया, इसलिए जो भी पाप कर्म हुए इन कर्म इंद्रियों से, सबसे पहले बाबा हम सब का ध्यान दृष्टि पर खिंचवाते हैं। बच्चे सभी की इस समय क्रिमिनल दृष्टि हो गई, देह को देखना, रूप को देखना, उस पर आकर्षित होना, उसी ढंग से व्यवहार करना, इसलिए बाबा ने अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले सभी आत्माओं का पहले नेत्र का ऑपरेशन कर दिया, जो क्रिमिनल नेत्र थे, जिससे देह दिखाई देती, रूप दिखाई देता, रुपया दिखाई देता, फुल देह मान के कारण सब प्रकार के संकल्प विकल्प चलते। बाबा ने पक्का कराया, बच्चे इन आंखों को सिविलाइज्ड बनाओ, सिविल करो, स्वच्छ करो, जो कुछ देखो केवल आत्मा को देखो, इस शरीर पर देखते हुए भी तुम्हारी नजर न जाए, तब पापों से मुक्त बन सकते हो। नहीं तो कोई न कोई इंद्रिय आकर्षण भी पाप कराती है। दूसरा बाबा ने कहा, बच्चे जैसे आंखें क्रिमिनल होती हैं, ऐसे मुख भी क्रिमिनल हो जाता है। मुख के दो कार्य, जीभ दो कार्य करती है, दोनों से कई बार पाप हो जाते हैं। एक जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया, सामने वाले की स्थिति उसकी परिस्थिति न देख करके कई बार हमारे मुख से ऐसे शब्द उसके प्रति निकल जाते जो उसकी ऊंची स्थिति सेकंड में डाउन हो जाती, घायल कर देते, पाप शुरू हो जाता। इसलिए आप हम सबको बाबा ने मंत्र दिया, बच्चे वही बोलो जो बहुत आवश्यक बोल हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मानजनक बोलो, और नहीं बोलो तो चुप रहो। आज जितनी समस्याएं, जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हमारी लूज टॉक के कारण, बोल दिया हो गया। इसलिए सभी बाबा के घर में एक संकल्प ले करके अगर जाएं कि हम इस पाप से मुक्त करेंगे, कोई ऐसे बोल बोल करके किसी आत्मा के दिल को नहीं ठुकराएंगे, दिल को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता। दूसरा कार्य है, जो आया अगर कोई चीज अच्छी लगती है, जवान चलायमान होती है, ये खाऊं ये खाऊं, इस पर भी बाबा की बहुत मुरलियां चली हैं कि बच्चे, कई बच्चे हैं जो अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते, छिपा के खाएंगे, उठा लेंगे, बताएंगे नहीं, ये भी एक पाप शुरू हो जाता। बहुत गुहे गति है इसकी, कहेंगे हम तो मालिक है ना, मधुबन में बाबा मुरली में कहते थे, मान लो आज भंडारी वाली ने किसी के लिए स्पेशल, कोई मेहमानों के लिए अच्छी चीज बना के रखी है और आप चक्कर लगाते, आपको बहुत अच्छी लगती है, बिना पूछे उठा लिया, खा लिया, और जिसने जिसके लिए बनाया जब वो गई उसको नहीं मिला, ढूंढती रही, समय गया, एनर्जी गई, संकल्प चले, ये भी एक बहुत सूक्ष्म पाप है। इसलिए एक सिस्टम बनाई बाबा ने अपने मधुबन में, यज्ञ की सिस्टम बनाई कि भले आप मालिक हैं लेकिन जिस डिपार्टमेंट को चला रहा है कोई भी, उससे आपको बिना पूछे बिना छुट्टी लिए कोई चीज नहीं उठानी है, नहीं लेनी है, बता के लेनी है, भले लो, मना नहीं है, लेकिन उसको पूछो। तो छिपा लेना, चोरी कर लेना, कितनी मूल्यां बाबा की चली, कख का चोर सो लख का चोर, छोटी सी चोरी, हेरा फेरी, इधर की उधर कर दिया। तो बाबा ने हम सब की एक एक इंद्रिय को पावन बनाने के लिए, इनसे पुण्य कर्म करने के लिए बहुत सुंदर श्रीमद्दी बाउंड्री बनाई। पुण्य आत्मा बनने वाली आत्माएं एक बाउंड्री के अंदर रहती हैं, बाउंड्री क्रॉस करते ही उसे पाप होने लगते हैं, और वो है मर्यादा की बाउंड्री, श्रीमत की बाउंड्री। दृष्टि के द्वारा क्या देखना है, केवल प्रकृति के बीच में, मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि को देखो, सांप को नहीं देखो, शरीर सांप पे डस लेगा। बहुत सारी मूल्यां पर चली है अव्यक्त बाबा की, अपनी जबान पर, बोल पर भी कंट्रोल और भोजन पर भी कंट्रोल, अनासक्त वृत्तियों के आधार से आप पुण्यात्मा बन सकते हैं। और पापों की गति हर कर्मिंद्री, अगर मान लो कण रस भी है, कोई बात सुनाता है इधर की उधर की पर चिंतन वाली व्यर्थ बातें और आप बहुत इंटरेस्ट से सुनते हो, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो एक स्टाक व्यर्थ का किचड़े का जमा होता जाता, वो भी पाप के खाते में चला जाता। इसलिए बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर मंत्र दिया, जैसे गांधी जी ने 3 बंदरों का एक खिलौना बनवाया, एक के मुख पर उंगली है, एक की आंखों पर उंगली है, एक की कान पर उंगली है, उसके आधार से कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ने हम सबको कहा बच्चे थिंक नो इविल, पहले सोचने पर ध्यान दो, सोचते क्या हो, अगर गलत सोच रहे हो तो सोचने से भी एक ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है, और वो आभा मंडल कई प्रकार के विकर्म करा देता है। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को एक नियम बना करके बाबा ने दिया, सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करो, शक्ति लो, सकास लो, और फिर अपने चिंतन धारा को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा की मुरली का अध्ययन करो, मुरली सुनो, ध्यान पूर्वक एकाग्रचित से भगवान के महावाक्य मेरे कानों में जा रहे हैं। जिसका चिंतन चेंज हो गया, चिंतन श्रेष्ठ हो गया, उसका चरित्र उज्ज्वल हो जाएगा। चरित्र की गिरावट माना पाप आत्माओं की सृष्टि बन गई। हमारे देश में धन दौलत की कमी नहीं है, चरित्र गिर गया व्यक्ति का, अगर धन है भी तो उसको यूज कहां कर रहा है, किस तरह से यूज कर रहा है। तो हम सब ने बाबा की ये भी महावाक्य सुने हैं कि जिसके पास जितना अधिक धन है वो उतना ही अधिक पाप कर रहा है, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका व्यवहारिक जीवन पापों से घिरा हुआ है। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को इसकी बहुत सुंदर गहन गति बनाई, बताई कि बच्चे अपने धन को भी मैनेज करना सीखो, ऐसे नहीं पैसा आया है तो खर्च कर रहे हैं, कहीं तो लगाएंगे ही। अगर पुण्य आत्मा बनना है, श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी जमा करनी है, 3 बातों पर ध्यान देना। सबसे पहले सत्य स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर सत्य स्वरूप में स्थित हूं। सत्य के 2 अर्थ हैं, एक अविनाशी प्रकृति, आत्मा परमात्मा अविनाशी, सत अविनाशी को कहा जाता और सत सच्चाई को कहा जाता। जो कुछ बोले अगर हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रह करके बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो कभी भी इन कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं हो सकता। जहां देह मान आया, देह मान के साथ साथ स्वार्थ है, ईर्ष्या है, अनुमान है, अहम है, बहम है, बहुत सारी रचना जो हर एक आत्मा से कुछ न कुछ पाप कर्म करा देती है। मोटे मोटे विकारों को तो बाबा के बच्चों ने जीत भी लिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में इन विकारों के कारण चलते चलते जो श्रीमत की अवज्ञाएं होती हैं, वो अवज्ञाएं भी पाप कर्म करा देती है, उसको भी पाप के खाते में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि एक सूक्ष्म अवज्ञाओं का बोझ मन की स्थिति को हल्का करने नहीं देता, वो योगी जीवन का अनुभव ही नहीं कर सकता। अगर कोई भी श्रीमत में मनमत ऐड करके, अपनी बुद्धि चला करके, या बाबा की श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझ करके कोई कार्य करता है तो ये भी पाप कहलाता है। बुद्धि का अभिमान, बहुत अच्छी बुद्धि है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं रिसर्च करने वाला हूँ। बाबा ने, बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा ने अपने बच्चों को कहा, बच्चे इस अभिमान का त्याग कर दो, इसी से सब पाप हो रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने इतना कार्य किया, हमारी दादियों ने क्या नहीं किया, लेकिन कभी भी उनकी वाणी में ये नहीं सुना कि मैंने किया। आज कोई करता है, कोई के लिए कुछ एहसान कर देता है, उसका वो कितनी जगह वर्णन करता है, मैंने इसके साथ ये किया, मैंने इसको आगे बढ़ाया, मैंने इसका नाम किया, मैंने इसको ये चांस दिया। मैंपन जो है यही वास्तव में पाप का बीज है। बाबा ने इस पाप के बीज को खत्म करने के लिए कहा, इस मैं के स्वरूप को पहचानो। एक मैं आत्मा हूं, दूसरा मैं बहुत समझदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं इस पद पर हूं, इस पोजीशन पर हूं, ये अहम वाला मैं जब भी कोई कर्म करेगा वो कर्म पाप कर्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उस आत्मा से कुछ न कुछ दुख की फीलिंग आएगी, सामने वाली आत्मा उसकी एक एक बोल से, उसकी वाणी से डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, तीन प्रकार के मैं को समाप्त करो और एक प्रकार के मैं पर अभ्यास करो। ये अहम वाला मैं, कि मैं ही सब कुछ हूं, बिना मेरे पूछे, बिना मेरी राय के, बिना मेरी बातों समझे कुछ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अनुभवी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं मालिक हूं। बस उस मैं के कारण, अहम भाव के कारण, उसका उसके कोई समीप भी आना नहीं चाहता। और दूसरा मैं तो कोई काम का ही नहीं हूं, निराशा, उदासी, हताशा। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, अरे तुम मेरी महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। वो समान नहीं, वो नशा ही नहीं रहता और दूसरों से भेंट करके समझता है इसको इतने चांस मिलते, इसको ये है, इसको ये है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये है दिल शिकस्त की, दिल की बीमारी। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी अपने को नानक नीच नहीं समझना। आप बहुत गुणवान आत्माएं हो, बहुत महान आत्माएं हो, भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी, आप उनके चुने हुए रतन हो। इस निश्चय और नशे में रहो, साधारण संकल्प में अपने आप को निराश, उदास, हताश नहीं करो। और तीसरा, एक मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मुझे कोई देवता बनने का लालच नहीं है। बाबा को जो बनाना है बना देगा, वो ठहरा पानी, न इधर चलता न इधर चलता, बहना ही नहीं जानता, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस रोज है, नियमित आते है। कोई एक दिन भी योग मिस नहीं करेगा, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करेगा, लेकिन कभी उसके अंदर नवीनता हो, कोई उमंग हो सेवा का, कोई नई विचारधारा, नई प्लानिंग हो, ठीक है। आप लोग भले देवता बन जाना, आप भले राजा ही ले लेना, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, ये कौन सा मैं है। बाबा ने अपने बच्चों को ये तीन प्रकार के मैं से मुक्त करके कहा, बच्चे जब मैं शब्द बोलो तो अपने समान में मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूं, मुझे भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है, पालना दी है, पढ़ाया है, श्रेष्ठ मत दे रहा है, मैं कितनी श्रेष्ठ, कितनी महानवान, कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। इस मैं के आधार से जो कर्म करेंगे वो हर कर्म पुण्य कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा। बाबा ने पुण्य की परिभाषा बताई कि बच्चे दो बातों के आधार से ब्रह्मा बाबा ने नर से श्री नारायण पद पा लिया। कभी भी वर्णन नहीं किया मैं कुछ करता हूं, बच्चे मैं कुछ नहीं करता, एक बाबा कराने वाला करा रहा है और एक मेरे बच्चे कर रहे हैं। पहला स्लोगन पक्का किया, कोई भी अच्छे से अच्छा काम करो, पुण्य का काम करो, लेकिन इस हाथ से करो इसको भी पता न चले। गुप्त दान महापुण्य, जिस आत्मा ने महापुण्य किया माना जो कुछ किया, चाहे तन से किया, चाहे मन से किया, चाहे धन से किया, जो शक्ति है बाबा की स्थापना के कार्य में सफल की, लेकिन उसके लिए अपेक्षाएं नहीं रखी कि मैंने इतना किया तो कम से कम मुझे स्टेज पर तो बुलाया जाए, मेरा नाम तो लिया जाए, कुछ अखबार में फोटो तो आ जाए, मीडिया में तो आ जाए। ध्यान देना, बाबा ने कभी भी इस बातों पर फोकस नहीं किया। बच्चे गुप्त दान महापुण्य है, जो सेवा करो बहुत गुप्त करो, और तुरंत दान महापुण्य, जो अच्छे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प उठे, जो अपने और दूसरों के भाग्य बनाने वाले सकारात्मक संकल्प चले, उसमें डिले नहीं करना, तुरंत करो। तुरंत करोगे तो आपको उसका कई गुना फल मिल जाएगा, नहीं तो बाबा कहेगा डिले इज डेंजर, डिले करोगे तो माया कहीं ना कहीं घुस जाएगी, प्रवेश हो जाएगी। तो सभी ध्यान देना, जितना हम आत्मविमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, इस देहभान से न्यारा रहने का अभ्यास करेंगे, उतना अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल आता जाएगा। मीठे बाबा ने पिछली मुरली में हम सबको एक होमवर्क दिया 18 तारीख को, बच्चे मन बुद्धि पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से इसको कंट्रोल करो, नहीं तो व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर धारण करो, जितना आत्मभिमानी स्थिति बनती है उतनी कंट्रोलिंग पावर आती है। सबसे पहले आत्मा अपनी सबसे बड़ी शक्ति मन पर कंट्रोल पा लेती है, और मन कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियां कुछ नहीं गलत कर सकती, मन उनका मालिक है इंद्रियों का।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
शिव बाबा के ज्ञान से
कलयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में अब तुम्हें आना है, सतयुग में अब तुम्हें आना है,
मन को कंट्रोल कर पाए कि नहीं? कंट्रोल हुआ किसका? किसका हुआ? सच बोलना है? हुआ? ये ट्रैफिक कंट्रोल किसके लिए है? मन को कंट्रोल करना, मन की विचारधाराएं जो बहुत इधर उधर भटक रही हैं, अपने स्वस्वरूप में, अपने स्वधर्म में टिका दो, फिर स्वपिता को याद करो। तो जितना मन की कंट्रोलिंग पावर अगर बढ़ती जाएगी, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के आधार से हम इन कर्म इंद्रियों को अपने अधीन कर सकते हैं, नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई जगह लटक जाती, अटक जाती। और पाप कर्म तब बनते हैं जब कहीं विशेष आकर्षण होती है, किसी में भी आकर्षण, देह में आकर्षण है, धन में आकर्षण है, वैभव में आकर्षण है, अपने किसी संस्कार में आकर्षण है। आकर्षण होना शुरू हुआ, आकर्षित हुई आत्मा, उसकी तरफ लगाव हो गया, झुकाव हो गया, और उस लगाव झुकाव से उसके द्वारा कोई न कोई पाप कर्म होने लगे। बड़ी सूक्ष्म गति बाबा ने सुनाई कि बच्चे किसी से भी, कोई भी किसी विशेष आत्मा हो, उस आत्मा की विशेषताएं जरूर देखो, उस विशेषताओं के आधार से उसे आगे बढ़ाओ, लेकिन ये विशेषताएं देने वाला दाता कौन है? ध्यान जाना चाहिए, इसको ऐसा बनाया किसने है? आप किसी में भी अटकना लटकना नहीं। तो जहां लगाव झुकाव नहीं, वहां पर प्रभाव और दबाव नहीं, इसलिए कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं होते। जहां किसी का दबाव होता है, प्रभाव पड़ जाता है, वहां ही पाप कर्मों का दरवाजा खुल जाता है। इस पर बहुत गहरा चिंतन करना। और दूसरी ओर टकराव, किसी से वैर विरोध दुश्मनी ले लो, उस टकराव के आधार से कुछ न कुछ उसके प्रति गलत ख्याल चलेंगे, कुछ न कुछ उसका व्यर्थ चिंतन चलेगा, और उसके कारण कुछ न कुछ हम परदर्शन परचिंतन जो भी उषा बहन जी सुना रही थी, कहीं न कहीं कोई न कोई पाप कर्म हो जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अपने ऊपर फुल कंट्रोल करें कि मुझे अपने स्वचिंतन में रहना है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए सभी ध्यान देना कि संगम युग पर बाबा के बच्चे बनने के बाद अब कोई भी पाप कर्म न हो। उसके लिए दूसरी बात, पहले आत्मविमानी स्थिति और दूसरी बात, जो कुछ करो, जो बाबा कराए वो बाबा के आगे समर्पित करो। जब समर्पित करेंगे, उसकी रिजल्ट का ध्यान नहीं, भले क्या भी हो, कराने वाला बाबा करा लिया। कर्तापन के भान से जो आत्माएं मुक्त बन जाती हैं, हर पल बाबा बाबा कहके उनका शुक्रिया मानती, और बाबा उन आत्माओं से बहुत अच्छे अच्छे पुण्य के काम करा लेता। इसलिए ध्यान देना, हम पुण्य आत्माएं कभी भी किसी कर्म के फल की इच्छा न रखें। गीता में भगवान ने यही सिखाया है, बच्चे कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं रखो, समर्पित करो। ये बाबा आपने कराया, शुक्रिया आपका। अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भी हुआ, संकल्प करो फिर से दोबारा ऐसा नहीं होगा, उसका पश्चाताप इतना नहीं करो जो रोते रहो दुखी होते रहो। इसलिए बाबा ने हम सबको त्रिकालदर्शी बनाया, और त्रिकालदर्शी माना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं, लेकिन त्रिकालदर्शी माना वर्तमान, पास्ट, वर्तमान और फ्यूचर। जो कुछ कर्म करना है वर्तमान पर ध्यान दे करके करना। अगर आज का दिन मेरा श्रीमत अनुसार है, आज के दिन हमने फुल अपने ऊपर अटेंशन रखा है, हर मर्यादा का पालन किया है, तो निश्चित कल अच्छे से अच्छा होगा। आज की परछाई कल है, और जो आज बीत गई वो पास्ट हो गई, उस बीती को चिंतन नहीं करना। बीत गई, कोई अच्छा ही बीती है, अच्छा बात हुआ, अच्छा अनुभव हुआ, तो भले उसको रिवाइज करो, लेकिन ऐसा हो गया ऐसा हो गया। कई ब्राह्मण आत्माएं कोई छोटी सी गलती होती है उसको सोच सोच करके उसको बहुत बड़ा पहाड़ बना देते, ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो। अपने से हुआ तो भी पश्चाताप के कारण दुखी होते रहते, और दूसरे ने कुछ कर लिया तो उसका वर्णन चिंतन करके पाप का बोझा चढ़ा लेते। एक बहुत बड़ी गफलत, बहुत बड़ी गुहे गति किया उसने, सोचा मैंने, और केवल सोचा नहीं उसका वर्णन किया, और वर्णन करने का तरीका बड़ा वंडरफुल। कैसे वर्णन करते, एक बात मैं आपको सुनाता हूं, आपको ही सुनाता हूं, आप हमारे नजदीक है ना, इसलिए आप किसी को नहीं सुनाना। एक व्यर्थ बात, कहीं कोई छोटी सी कोई गलती हुई किसी आत्मा से, उसको इतना बहुत अच्छी तरह से सामने वाले को सुना करके अपने दिल को तो हल्का कर लिया, लेकिन जिसके अंदर वो डाल दिया वो क्या करेगा, संभालेगा, वो दूसरे को सुनाएगा, और सुनाते समय कुछ न कुछ उसमें एडिशन करेगा, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक। और एक बहुत छोटी सी बात जो अगर हम समा लेते तो समाप्त हो सकती थी, लेकिन वो दस के कान तक गई और वो एक इतना बड़ा पहाड़ हो गई, इतना वायुमंडल दूषित किया। और आजकल के जमाने में व्यक्ति मिले न मिले, सबके हाथ में मोबाइल है, इधर की न्यूज आई बिना सोचे, बिना इसकी इंक्वायरी, बिना समझे अपने एक मित्र को फॉरवर्ड कर दिया, एक के पास भेजा, उसने और दो के पास भेजा और तीन के पास गई, पूरा ही उस आत्मा के प्रति जिसके प्रति ऐसी व्यर्थ बात की वो इतना नेगेटिव रूप बन गया, जो बेचारे की सारी स्थिति अच्छी भी गिरावट की तरफ चली गई। ये सबसे बड़ा पाप ब्राह्मणों से हो रहा है, ये सूक्ष्म पाप जो किसी आत्मा के प्रति नफरत की दृष्टि से व्यर्थ की लेन देन करना, व्यर्थ समाचार लेन देन करके किसी की ऊंची स्थिति को गिरा देना, इसको बाबा कहते हैं। जब ऐसे वातावरण में बातें फैलती हैं, एक अच्छा वातावरण भारी हो जाता, उस वायुमंडल में कोई भी आत्मा आती है उसको शांति की, प्यार की, खुशी की, अपनेपन की अनुभूति नहीं होती। सेवा केंद्र का अच्छा पवित्र वातावरण भी एक नेगेटिव बात फैलने के कारण एक बहुत भारी भारी हो जाता। जो उसमें आता वो ये कहता, पता नहीं क्या है यहां, ये पाप किससे हुआ। करने वाला तो हो सकता है रियलाइज करके, महसूस करके उस पाप से छूट भी गया हो, लेकिन जिसने देखा और वर्णन किया, जिसने उस बात को दस्तक पहुंचा दिया, उसके ऊपर उस पाप का बोझ चढ़ जाता है। फिर कहते हम तो कुछ करते नहीं, पता नहीं मेरा योग नहीं लगता, मुझे खुशी नहीं रहती, मैंने तो कोई अवज्ञा की ही नहीं। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म अवज्ञाएं अपनी मत से, अपनी अपने चिंतन से, किसी आत्मा के प्रति गलत सोच करके या सुन करके उसको फैला देना। इसलिए कोई कोई मेरे से पूछते हैं कभी कभी, मैं कभी कम सुनाता हूं, आप दादियों के इतने समीप कैसे आ गए? सभी दादियां, जितनी दादियां हुई ना, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी रतन मोहिनी, जो भी हमारी दादियां आई, शांतामय दादी, मनोज इंद्र दादी, सबके साथ इतना नजदीक का संबंध रहा। कोई भी कार्य हो, कोई भी बात हो, ऐसे खुले दिल से चर्चा की। पत्र आए, कोई नेगेटिव बातें आई, सेंटर की समस्याएं आई, राजू ये ले जाओ, इसको जवाब दे देना। इतना फेथ, इतना विश्वास किया उन्होंने। क्यों? भले जिसकी बात है वो मुझे पता है, लेकिन वो अगर मेरे सामने है तो मेरे द्वारा उसको वाइब्रेशन भी नहीं आ सकता कि राजू भाई को ये बात पता है। बहुत अटेंशन, कोई बात अंदर किसी की भी कमी कमजोरी संस्कार मुझे बाबा ने बड़ों ने अगर दिया है उत्तर देने के लिए, तो मेरे द्वारा दूसरे के कान तक वो बात न जाए। भले सामने वाला कुछ सुना रहा हो तो भी मैं ये न कह दूं मुझे पता है। समाने की शक्ति सबसे जरूरी है। अपने परिवार में सहन करना पड़ता है, जहां हम रहते हैं वहां सहन करते हैं, लेकिन समाना, सागर की तरह समा लेना, समाया लेकिन उसने व्यर्थ अपने अंदर नहीं रखा। आज सागर में कितना भी कीचड़ चला जाए, कितना भी नदियों द्वारा इधर उधर से बहाव पानी में कीचड़ा डाल दो, आएगा वो कीचड़ा अंदर जा करके साइड कर देता है, वो अंदर लेता नहीं है। कोई भी अगर उसके द्वारा उससे गहराई में जाके कुछ लेना चाहे तो रतन मिलते हैं। बाबा ने अपने बच्चों को पुण्य आत्मा बनने के लिए ध्यान देना, मास्टर सागर बनो। परिवार है हमारा, छोटी मोटी बातें होती हैं, पिछले हिसाब किताब हैं, संस्कार हैं, हर एक अपने आप को बुराइयों से मुक्त करना चाहता है, लेकिन किसी की बुराई को हमने देख करके समा नहीं पाया, उसको वर्णन चिंतन कर दिया, तो बुराई हमारे जीवन में उतर आएगी। मम्मा बड़ी रमणीकता से एक बात कहती थी कि बच्चे बड़े समझदार हैं, एक अपने घर का किचड़ा बाहर फेंकता है, दूसरा उसको समेट के अपने पास रख लेता है। ये समझदारी है। हर एक अपने किचड़े को, अपनी गंदगी को, अपने स्वभाव संस्कार को, पुरानी बातों को खत्म करना चाहता है। कौन नहीं चाहता है? कोई कारण बन गया, कोई हिसाब किताब, कोई परिस्थिति आई, कोई पिछला खाता था, आ गई बात सामने, उसने हो गई, उससे उसने रियलाइज किया, परिवर्तन कर लिया, लेकिन जिसने देखा और वर्णन किया, अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन किया, वो पाप का भागी बन गया। इसलिए सब ध्यान देना, किसी की भी कोई ऐसी गलतियां अगर दिखाई देती, लौकिक में वो नियम बना हुआ है हमारे भारत की संस्कृति के अंदर, अगर 5-10 का एक परिवार एक साथ रहता है, कोई बच्चा गलती करके आता है, कोई को मारपीट करके भी आता है और अपनी माँ को सुनाता है मम्मी मेरे से हो गया, तो उसकी माँ ये कहती है तू अपने बाप को भी नहीं बताना, चुप हो जा, शांत हो जा। ऐसे नहीं कहती तुम जाके अड़ोसी पड़ोसी को बता के आ जाओ, न खुद बताती है न बच्चे को कहती कहीं वर्णन करना, भूल जा भूल जा। हम सब एक ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं और हर एक परिवार के सदस्य को इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। परिवार की बातें, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ईश्वरीय संगठन की बातें अगर कहीं थोड़ी बहुत हो भी जाती, दिखाई भी देती, बाबा कहते शुभ चिंतक बनो, शुभ भावनाएं रखो, योग का सहयोग दो, मनसा सेवा करो, व्यर्थ की लेन देन नहीं करो, नहीं आपके ऊपर पाप की गठरी चढ़ती जाएगी, फिर योग नहीं लगेगा। कहेंगे खुशी नहीं होती, हम 10 साल से ज्ञान में चलते, पहले तो हमारी इतनी अच्छी स्थिति थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, मैं कोई पाप भी नहीं करता हूं, कोई विकर्म भी नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं, वो योग नहीं लग रहा है, वो नशा नहीं रहता, कारण क्या? बहुत सूक्ष्म गति है पापों की, और वो पाप ऐसे ही देखा देखी सुनी सुनाई इधर की उधर किया, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाई, वायुमंडल को खराब किया, जहां योग का वातावरण हो, जहां अच्छा प्यार का संगठन हो, वहां जरा भी फूट डाल दी, बस वो पाप शुरू हुए, अपने मन के अंदर वो चढ़ता गया और चढ़ते चढ़ते हमारी ऊंची स्थिति पट में आ गई। इसलिए बाबा ने हम सभी बच्चों को कहा, बच्चे समर्पित भाव से जो कुछ अच्छा बुरा होता मेरे आगे समर्पण करो, रोज रात को मुझे सुना करके हल्के हो जाओ, लाइट होकर के बाबा की गोदी में सो जाओ, अंदर रख के नहीं सो, समर्पण भाव। बाबा ने हम सबको तन मन धन समय जो सेवाएं जो कर्म किया समर्पित करना सिखाया, और समर्पित करने वालों को तीसरी बात है ट्रस्टी रहकर बनना है। समर्पित करने वाले ऐसे नहीं, प्रवृत्ति वाले सिर्फ ट्रस्टी बनेंगे, लेकिन जो भी हैं चाहे प्रवृत्ति के हैं चाहे समर्पित बच्चे बाबा के हैं, सबको ये जो भी हमारे पास है तन मन समय शक्ति विशेषताएं, ये सब हमने तो बाबा को समर्पित की, बाबा ने कहा बच्चे इसको संभालो, इसको और बढ़ाओ, उसको और आगे लगाओ सेवा में, इसको मुझे बहुत ईमानदारी के साथ बहुत ट्रस्टवर्दी बन करके ट्रस्टी बन करके संभालना है, ये प्रभु अमानत है। मन अगर प्रभु अमानत है तो मन को अगर हम कहीं इधर उधर व्यर्थ में लगा रहे हैं ये हम सूक्ष्म पाप कर रहे हैं। तन प्रभु की अमानत है, कोई भी स्थान पर गलत जगह पर ये नहीं जा सकता, ये श्रीमत की बाउंड्री है, पैर इधर उधर नहीं जा सकते, कोई भी स्वभाव संस्कार पिछले जन्मों का हो गलत रास्ते पर अगर गए माना आपने बाउंड्री क्रॉस कर दी। इसलिए तन मन और धन बाबा के सिवाय ईश्वरीय सेवा के सिवाय और कहीं भी इधर उधर के कार्यों में हम नहीं खर्च कर सकते, जवाबदारियां संभालते हुए ये प्रभु अमानत समझ करके श्रेष्ठ कार्य में लगाना, अपना एक एक पैसा ईश्वरीय सेवा में सफल करके पुण्य की पूंजी जमा करना। अगर कोई आत्माएं समय पर सहयोगी बनती हैं, समय पर सहयोगी बनने की बहुत सी कहानियां हैं हमारे पास, जब यज्ञ के ऊपर समय था, जरूरत थी, आवश्यकता थी सहयोग की, बेगरी पार्ट के समय जब यज्ञ बिल्कुल ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था जो लोग समझते थे अभी ये टूटे के टूटे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि भंडारे में पैसा एक भी नहीं और आवक भी कहीं की नहीं, और ब्रह्मा बाबा को वो नशा, बच्चों को कहता बच्चे मांगने से मरना भला, जबकि उनके सब संबंधी ऑफर कर रहे हैं कि बोलना मुझे कुछ चाहिए तो, बता मैं तुम्हें से मांगेंगे क्या, भूखे रहेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बाबा ने उनमें इतनी शक्ति भरी, इतना बल भरा कि बच्चे तुम्हारे पास जो धन है वो कोई के पास नहीं है, ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, चरित्र का धन, जाओ इस धन का दान करो, वो धन अपने आप आ जाएगा। धन इंसान से पाप करा रहा है, धन पैसा 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 या रूप या रुपया, या चमड़ी या दमड़ी पाप का कारण बन रही है। बाबा ने हम सबको अनासक्त बनाया, क्या अपने लिए चाहिए, क्यों हम पैसे के लिए पाप करें, हेरा फेरी करें, छिपाएं। कोई 50 रुपए का बिल बनवाता है और उसमें 1 जीरो और लगा करके लगा देता है, कितना बड़ा पाप, और इतने सूक्ष्म पाप इंसान कर रहा है। किसके लिए कर रहे हैं, क्या चाहिए? भगवान 2 रोटी खिला रहा है, आराम से रखा हुआ है, कहीं भी रहो भूखा तो नहीं रखेगा अपने बच्चों को। बाबा ने 1 दिन भी भूखा नहीं रखा, लेकिन जिन्होंने समय पर साथ दिया उनके लिए वो बंध गया। उस समय एक माता ने 500 रुपया भेजे लिफाफे में, वैसे मनी ऑर्डर आते हैं, लिफाफे में आए जिस दिन कुछ नहीं था भंडारे में, और 500 रुपया आए 10 बजे तक, पता नहीं दोपहर को क्या बनेगा। भंडारे वाली बार बार बाबा के पास, बाबा आज क्या बनेगा, बच्ची वेट करो वेट करो वेट करो, और 500 रुपये आए पूरा समय पर, 1:30 बजे बेल लगी, सब कुछ खाना मिला, लेकिन जिस आत्मा से बाबा ने टच करा के वो पैसा दिलवाया भिजवाया था वो हमारे सामने 73-74 की बात मैं सुना रहा हूं। उस माता को दीदी ने, दीदी की भाभी थी कमला भाई भी, बहुत गुप्त रीति से भेजा था, भाई तो विरोध कर रहते थे सब, लेकिन उस भाभी का इतना प्यार था, और प्यार का कारण था दीदी की लौकिक माँ क्वीन मदर भी दीदी के साथ समर्पित हो गई थी। वो क्वीन थी, रानी जैसे पली हुई थी, और देखा इनके पास खाने के लिए नहीं कुछ नहीं है, तो उसने 500 रुपया भेजे। अब जब वो आई मधुबन में, बुलाया दादियों ने बाबा के अव्यक्त होने के बाद, कहाँ सुलाएं कहाँ रखें, क्योंकि सब जनरल बाथरूम जनरल कमरे दस के। दादी ने कहा नहीं, वो आ रही है, मैं जनरल में सोऊंगी, मैं अपने कमरे में उसको सुलाऊंगी। दादी प्रकाश मणि ने, जो दादी का ये कमरा था जिसमें कंबाइंड लेटरिन बाथरूम था, अपना कमरा खाली कर दिया। 3 दिन तक हो रही और दादी जनरल में जाए, लेटरिन बाथरूम जनरल में सोई जाके। समय पर साथ देने वाले के पुण्य जमा हुए, और उस पुण्य का फल जो भगवान भी उसको रिटर्न देने के लिए बन गया। हम सब बाबा के बच्चे इस यज्ञ में समय के महत्व को समझें। स्थापना का बहुत बड़ा कार्य भगवान का चल रहा है, उसमें मेरा कणा दाना सफल हो जाए। कोई भी बात पूछने की जरूरत नहीं, तुमने कितना किया, तुम कितना करता है। बाबा कहता पूछा तो पूछ लग गई, गए काम से। तुमको जितना करना, तुम जितना कर सकते हो, बहुत गुप्त दान महापुण्य यज्ञ में जो सफल करना है कर लो, कल किसने देखा, आपका भाग्य बन जाएगा। ये भी नहीं सोचना पता नहीं इसके पास जाएगा वहां जाएगा कहाँ चला जाएगा, भंडारी रखी है बाबा की, डालो चुपचाप, किससे किसको दिखाना किसको बताना। ऐसे बाबा के बच्चे पुण्य की पूंजी जमा करते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी सूक्ष्म गति है इसकी, और इस गति को अगर किसी ब्राह्मण ने समझ लिया, हर ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन किया, सोचने के लिए मर्यादाएं, स्मृति के लिए मर्यादाएं, बोल के लिए मर्यादाएं, दृष्टि के लिए मर्यादाएं, वृत्ति के लिए मर्यादाएं, कर्म के लिए, व्यवहार के लिए, संबंध संपर्क के लिए, हर बात के लिए बाबा ने अपने सब ब्राह्मणों को मर्यादा की ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच के दी है। जिसको न पता हो पूछो, है कोई ऐसा जिसको पता नहीं है? हर चीज बाबा ने सुनाई है, और जिन्होंने बाबा की मूल्यों की अच्छी स्टडी की है उनको सब पता है, मुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कितना सोचना है कितना नहीं सोचना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, किस प्रकार का दृष्टिकोण बनाना है, कैसी वृत्तियां रखनी है, कैसे कर्म करने हैं। हमारे मीठे बाबा ने हम सबको इन सब प्रकार की श्रीमत मर्यादाएं दी हैं, और जो ब्राह्मण बच्चे इन मर्यादाओं को दृढ़ता के साथ पालन करते हैं उनसे कोई पाप कर्म नहीं होता। वो उड़ते हैं यहां आकर के, उड़ती कला में उड़ते हैं। बैठो ऐसे योग, ऐसे नहीं झुटका मारेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, एक मिनट में मन एकाग्र हो जाएगा। बैठते ही बाबा अपने पास खींच लेगा, पुण्य की पूंजी है, दुआओं का हाथ है बाबा का। योग लगाने में कोई मेहनत नहीं, योग उनका नहीं लगता, बुद्धि उनकी भ्रमित और भटकती है जिनसे कोई न कोई सूक्ष्म में पाप हो रहे हैं। और पाप का मूल कारण देहमान, और देहमान के सब रचना बहुत बड़ी है। हम सब इसको सूक्ष्म चेक करें और संगम युग पर ऐसे पुण्य की खाते को बढ़ा दो, जमा कर लो, जो आधा कलप पुण्य आत्मा के रूप में पार्ट बजाने का भाग्य मिले। ये है संगम का समय, और हर बाबा के बच्चे को ध्यान देना है, कोई भी सूक्ष्म में भी मर्यादाओं का उल्लंघन न हो। मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपना पुरुषोत्तम मुखड़ा देखो और पुण्य की दुनिया के लायक बन जाओ। 12:30 बज रहा है, अभी हम सभी आधा घंटे योग करेंगे। कोई को जल्दी तो नहीं ना भूख लगी हो तो, क्योंकि ये थोड़ा सोने का टाइम है, नींद आ जाती। आप सब बहुत अलर्ट होके बैठेंगे तो हम आधा घंटे विशेष लक्ष्य दे के योग करेंगे। अगर जरूरी हो तो उठो, लेकिन 1 बजे आपको सबको छुट्टी मिल जाएगी। 3 बातें मैं आपको सुनाता हूं, डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस। सकास, सर्च लाइट, करेंट, साकारी, आकारी, निराकारी, ये तीनों की ड्रिल है। और अगर आप सभी 10-10 मिनट से ड्रिल करें तो आधा घंटा ऐसे निकल जाएगा, समय ऐसे लगेगा जैसे बैठे और उठे। लेकिन अगर इधर उधर बुद्धि जाती है, शांत करने की कोशिश करते हैं तो शांत होते होते शांति धाम में चले जाते हैं। इसलिए सभी अच्छे अनुभव करना है तो सबसे पहले डीप साइलेंस में जाओ। साइलेंस डीप, जैसे सागर के तले में चले गए, रतन मिलेंगे। जो अंदर डुबकी लगाना जानता है, बड़ा शीतल शांत बिल्कुल हलचल से परे चले जाता। सागर के ऊपर इतनी हलचल, उछल रहा है, और जो अंदर चला गया वो शीतल हो गया, शांत हो गया, रतन मिलने लगे, अनुभव होने लगे। तो सभी अपने भ्रकुटी आसन पर बैठकर अपने स्वस्वरूप को देखो। एक लाइट, चमकता हुआ दिव्य सितारा इस देह से निहारा। से पहले उस परम ज्योति बाबा को अपने भ्रकुटी आसन पर आमंत्रित करके बिठा लो। बाबा, ये बहुत पवित्र आसन है, अकाल तख्त है, आप परम धाम घर से इस आसन पर आ जाओ। मुझे अपने पवित्र स्वरूप का, शक्ति स्वरूप का अनुभव कराओ। पारस को अगर लोहा भी टच होता है तो सोना बन जाता है। आप पारसनाथ हैं, मैं आपके सानिध्य में आपकी समीपता का अनुभव करने के लिए आपको इस सकाल तख्त पर आमंत्रित करता हूं। आप अपनी सर्व शक्तियों के साथ मुझे अपने संग का रंग लगा दें। मैं आपके समान मास्टर सागर बनने के लिए तैयार हूं। आप शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर सर्वशक्तिमान है। मुझ आत्मा को इन सब गुणों में मास्टर बनना है। सभी दीप साइलेंस में चले जाओ। संकल्पों की भी हलचल नहीं, सिर्फ स्वधर्म की स्मृति है। स्वस्वरूप में स्थित है, सागर की गहराई से अपने लाइट के शरीर में चले जाओ। अपने फरिश्ते स्वरूप का दर्शन कितनी चमकीली ड्रेस है। मैं परम पवित्र आत्मा लाइट की ड्रेस में हो। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में लाइट के शरीर द्वारा विश्व परिवर्तन का इतना महान कार्य कर रहे हैं, मैं आत्मा भी उनके समान लाइट रूपधारी फरिश्ता हूं। उस फरिश्ते पर लाइट के शरीर पर ज्ञान सूर्य बाबा की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। जैसे कोई स्वच्छ चमकीले कांच पर सूर्य की किरणें आते ही चारों ओर फैल जाती हैं, ऐसे मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में एक प्रकाश पुंज हूं और ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को संपन्न भाव का वरदान दे रही है। ज्ञान सूर्य की सकाश का अनुभव करो। उनके द्वारा प्राप्त लाइट और माइट की किरणें इस पूरे ग्लोब को जा रही है, अनेक भटकती हुई आत्माओं को सही रास्ता मिल रहा है। सहारे का अनुभव कर रही है। अपने फरिश्ते स्वरूप से शिव बाबा की सर्वशक्तियों को स्वयं में धारण कर सर्च लाइट की तरह चारों ओर पूरे ग्लोब पर किरणें डालो। इस वायुमंडल की भटकती हुई आत्माएं विकारों के अधीन दुखी आत्माएं अनेक संस्कारों में परेशान आत्माएं सर्वात्माओं प्रति मुझ आत्मा की शुभ भावनाएं हैं सबका भला हो सब सुखी हो सुख शांति का वर्षा अपने पिता से प्राप्त कर ले शुभ भावनाओं की किरणें चारों तरफ फैलाओ सभी अपने मूल स्वरूप में अपने परमधाम घर की अनुभूति के लिए बहुत अलर्ट होकर के उस सुनहरे लाल प्रकाश के मध्य उस परम ज्योति शिव बाबा को देखो अपने दिव्य नेत्र से बाबा को देखते उनकी शक्तियों का अनुभव करो। इस घर में कोई हलचल नहीं, डेड साइलेंस। आत्मा परमात्मा में जैसे समा गई, प्यार का सागर, सुख का सागर, मैं आत्मा उस सागर में, उस प्यार में खो गई। बहुत सुंदर लौलीन स्थिति है ये, आत्मा और परमात्मा का समीप संबंध और मिलन है। ये मिलन ही परमानंद की अनुभूति कराता है। सभी उस संपूर्ण आनंद की स्थिति में बैठो। ज्ञान सूर्य चमकता हुआ सितारा बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें उस सितारे पर आ रही हैं और मैं उसी सागर में जैसे समा गई हूं। असीम शांति, पवित्रता और सर्व शक्तियों का अनुभव। उस परमधाम घर से पूरे उल्टे वृक्ष को करंट दो। करंट ही उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति देगी। प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाएगी।
आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो, आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है, रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो, स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
हम सभी मौन की भाषा में एक हाथ की ताली से भाई जी का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई जी, पाप और पुण्य की गुरिय गति का राज समझाया।